ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो।
शांति। वर्तमान समय इस सीजन में बाबा के जो इशारे हमें मिले हैं उस अनुसार तीन चार मुख्य बातें हैं जो बाबा ने बार बार इस सीजन में हमें कही है। एक तो संस्कार परिवर्तन की बात बाबा ने हमें कही है, दूसरा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की बात कही है, बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, और चौथी बात मनसा सेवा। मैं समझती हूं बाबा के इशारों के साथ साथ हम अपने पुरुषार्थ को चलाते हैं तो बड़ा सहज हो जाता है, और बाबा जहां हमें पहुंचाना चाहते हैं हम समय अनुसार उस लक्ष्य पर अपने आप को भी पहुंचा सकेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अलग से कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती है। प्रतिवर्ष 6 मास बाबा आते हैं, हर 15 दिन के बाद, और हमें लेटेस्ट सिग्नल्स देते हैं, और बाकी के 6 मास में उसे प्रैक्टिकल करने की मार्जिन भी देते हैं। इसलिए बाबा के साथ साथ अपने आप को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाना सहज है, क्योंकि बाबा ही गाइड करते हैं और बाबा ही मार्जिन भी देते हैं। तो समय जब आएगा हम खुद को तैयार कर सकेंगे, हम रेडी रह सकेंगे। सेकंड में फुल स्टॉप की बात जो है, हम सबका अनुभव होगा क्योंकि हम हर एक इसका अभ्यास करते हैं, और लगभग हम अपने आप को सेकंड में बिंदु बनना मुश्किल अनुभव करते हैं। लगभग फेल ही होते हैं। कैसे हम इनको सहज बनाएं, क्योंकि यही अंतिम क्वेश्चन है। जब समय ऐसा आएगा, परिस्थितियां ऐसी आएगी, उस समय हम बिंदु बन सकेंगे, बिंदु दे सकेंगे, तो आसपास की परिस्थिति और वातावरण के प्रभाव से अपने को मुक्त रख सकेंगे। अगर बार बार हमारी बुद्धि आसपास जो हो रहा है, मेरे अपने जीवन में जो हो रहा है उसमें अगर बुद्धि जाएगी तो जरूर हम उस परिस्थिति के प्रभाव में आ जाएंगे, और परिस्थिति का प्रभाव तो वही भय, चिंता, दुख और दर्द का ही होगा। इसलिए प्रैक्टिकल में परीक्षाएं शुरू हो उससे पूर्व ये तैयारी बाबा हमसे करा रहे हैं और बहुत समय का अभ्यास लक्ष्य अटेंशन हमारा अपना रहेगा तो ही समय पर हम बन सकेंगे। तो मेरे अपने अनुभव से कि जहां भी मान लो मेरे जीवन के सामने औरों के सामने होता है उसमें तो हम कई बार न्यारे रह सकते हैं, डिटैच रहते हैं, वही बात ज्यादा असर करती है जो खुद से कंसर्न होती है, है ना? रोज हजारों लोग मरते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या क्या घटनाएं बनती है, हम पढ़ते हैं 2-4 सेकंड महसूस भी करते हैं, लेकिन उसमें अपना रिलेटेड कोई फंसा है, शिकार हुआ है, खुद के साथ वो घटना बनती है तो वो ज्यादा असर करती है। औरों की बात में साक्षी बनना सहज है, खुद की बात में इसलिए हमारे सामने जो बातें आती है उसको लेकर के ही मैं बात करूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी जो हमारे सामने परिस्थितियां आती है, बातें आती हैं, वो केवल अभी के हिसाब किताब अनुसार नहीं, लेकिन टोटल जो हमारा अकाउंट है 84 जन्मों के अंदर जो हमारा माइनस प्लस हुआ है और वो माइनस प्लस होकर के जो लास्ट का अकाउंट हमारा बना है प्लस वर्तमान का हिसाब किताब, ये दो मिलाकर परिस्थिति हमारे में आएंगी। इसलिए आई हुई परिस्थिति को कई बार हम इसलिए नहीं समझ पाते हैं या मन से इसलिए स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि भाई वर्तमान में तो मेरी ऐसी कोई भूल ही नहीं है, फिर भी मेरे सामने ये बात क्यों आई। एक है ना भाई, मेरी भूल हो और बात आए तब तो स्वीकार हो जाए कि भाई मेरी भूल है, मैंने ही हिसाब बनाए हैं। पर एक है कि मेरी ऐसी भूल ही नहीं है और इतनी भारी परिस्थिति मेरे सामने आ गई है, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, फिर क्यों हुआ, क्यों उसने किया, ये प्रश्न मन में बार बार आता रहता है। इसलिए हम अपने अंदर ये समझ स्पष्ट रखें कि टोटल हिसाब क्लियर हो रहा है, केवल इस जन्म का नहीं लेकिन टोटल 5000 वर्ष में 84 जन्मों में जिसके साथ जहां जो कुछ भी हुआ उसका जो माइनस प्लस का हिसाब है उनके फल स्वरूप भी ये बात आ रही है। इसलिए मुझे प्रश्न नहीं करना है कि ये क्यों आई है, मेरी तो कोई भूल ही नहीं है, क्यों आई है। हमें स्वीकार करना है कि आई है, माना कोई हिसाब है, आई है माना मेरा कोई हिसाब है। अब मुझे क्या करना है, वो मुझे सोचना है। पिछले सीजन में भी बाबा ने दो बात कही थी कि एक तो ये परिवर्तन का समय है, टोटल चेंज का पीरियड है, इसलिए जब आमूल परिवर्तन का समय होता है तो हलचल होगी ही, अंत का समय है। दूसरी बात बाबा ने ये कही थी कि अंत का समय है, इसलिए भी बातें आनी ही है। तो अगर बुद्धि में बाबा के बताई हुई ये ज्ञान की बातें याद रखेंगे तो हम घबरा नहीं जाएंगे कि क्यों ये बात आई। परिवर्तन का समय है, अंत का समय है, टोटल हिसाब किताब क्लियरेंस का समय है, इसलिए बात तो आएंगी ही, है ना। जो जानते नहीं और बात आती है तो इंसान घबरा जाता है, हक्का बक्का रह जाता है कि अरे ये क्या हो गया, पता ही नहीं। पर आज भी बाबा ने कहा ना अनजानपन, पर हमें पता है, बाबा ने अनेक बार बता दिया है। जो भी हमने चक्र की 84 जन्मों की बातें समझी हैं, उसे हमें बाबा ने कहा ही है कि ये बातें आएंगी, है ना। पहले देखो एक समय था कि आप खुद सावधानी से चलते थे, नियम से चलते थे, तो आप सेफ रहते थे और एक्सीडेंट नहीं होते थे। अब समय ऐसा है कि आप सावधानी से चलो तो भी लोग सामने से आके ठोक देते हैं। इसलिए अब समय ऐसा है कि मैं ज्ञान में ठीक चलूं, नियम से चलूं, तो मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हम ठीक से चलेंगे तो भी कोई आके टकराएगा, हमसे ठुक जाएगा, उस समय मुझे क्या करना है। तो सबसे पहली बात कि पता है ये होना है, और मुझे अपने आप को जितना सेफ मैं रख सकती हूं वो रखना है, और इसके बावजूद भी होता है तो मुझे धैर्यता, हिम्मत और बाबा की याद से चलित हुए बिगर उस बात को पार करता है, क्योंकि पार तो करना ही है, जीना तो है ही, है ना। और कोई कदम तो उठाना नहीं है, इसलिए रास्ता यही है कि बाबा की याद, धीरज और हिम्मत से उसे पार करना है। धीरज तब रहेगी जब अंदर में ये विश्वास हो कि अगर हम सत्य हैं, मन में कोई स्वार्थ प्रपंच नहीं है, तो सफलता जरूर मिलेगी। सत्य जो भी बाबा ने बताए हैं उस अनुसार चलने में विजय है ही। कितना भी हिलाने वाली, नुकसान पहुंचाने वाली बातें आएंगी आगे पीछे के हिसाब के अनुसार, लेकिन जो ग्रैंड टोटल आएगा, फाइनल जो टोटल रिजल्ट आएगा, वो सफलता का ही आएगा अगर मैं सही हूं, सत्य हूं श्रीमत पर। बाबा ने कहा है ना कि श्रीमत पर अगर तुम है तो बाप रेस्पॉन्सिबल है। तो ये अंदर में विश्वास हो पक्का प्रैक्टिकल में कि कुछ भी हो जाए श्रीमत छोड़कर व्यवहार नहीं करना है, और ये विश्वास रखना है कि इसमें भी मेरा कल्याण ही होना है, सफलता ही मिलनी है। दूसरी बात कि हम ज्ञान सुनते हैं, समझते हैं, सुनाते भी हैं। बाबा की मुरली में जो महावाक्य आते हैं रोज सुनते हैं, मानते हैं, दूसरों को भी सुनाते हैं। कौन सी बात? कि जो कुछ हुआ ड्रामा, क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ड्रामा हुआ। हम ही कहते हैं ना जो कुछ हुआ वो ड्रामा है। फिर प्रश्न क्यों, क्यों हुआ, क्या हुआ। दूसरा, जो कुछ हुआ ड्रामा है और ड्रामा कल्याणकारी, ये सिर्फ कहते हैं या हम मानते भी हैं? अगर मैं मानती हूं कि ड्रामा कल्याणकारी है तो जो कुछ मेरे सामने हुआ, मेरे साथ हुआ, वो कल्याणकारी है। और दूसरा, एक्यूरेट है ड्रामा। बाबा कहते हैं ना ड्रामा एक्यूरेट है। कई बार हम सोचते हैं ना कि भाई ठीक है, इतनी बात थी तो इतना मेरे साथ व्यवहार करना चाहिए, इतना क्यों किया। नहीं, एक्यूरेट ही किया। हम कहते हैं ना ड्रामा एक्यूरेट, तो कम ज्यादा की तो बात ही नहीं है ना। हमें लगता है मेरे साथ ज्यादा हुआ, वास्तव में तो एक्यूरेट ही हुआ। तो अगर ये तीनों बातें पक्की हैं, जो कुछ हुआ ड्रामा, माना ड्रामा के बिगैर तो कोई बात हुई नहीं है ना। जो ड्रामा में है वो ही हुआ है। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है। तो आपके मन में जो कुछ हुआ या होता है उस समय ज्यादा संकल्प नहीं चलेगा, क्योंकि अंदर पता है, ज्ञान है और विश्वास है, मुझे क्या करना है। बस हमारी जो सोचने की बात है, जिस विषय पर संकल्प चलाने की बात है, वो सिर्फ इतनी ही है कि अब मुझे क्या करना है, क्यों हुआ, इतना किया, इसने किया, ये सोचने की आवश्यकता ही नहीं। अब मुझे क्या करना है, तो हम कितनी भी बड़ी बात होंगी तो भी फुल स्टॉप लगा सकेंगे, या हम ज्यादा संकल्पों में नहीं जाएंगे। दूसरी बात, मुझे क्या करना है, बाबा का डायरेक्शन क्या है, वो याद करे। बाबा ने कहा है ना कि अगर उस क्षण शरीर छूट जाए और हम परिस्थिति के चिंतन में होंगे तो हमारी क्या गति होंगी। इसलिए मुझे मेरे तरफ से क्या करना है, मेरा अपना कुछ भी सुधार करना है तो वो कर ले, बाकी हम बाबा की याद में मन को ठीक रख कर चले। तो हमें क्या करना है वो भी टच होगा, वरना हमारा चिंतन इतना होता है कि ना राइट टचिंग आएगी ना बाबा की मदद जो लेनी चाहिए मुझे वो मैं ले नहीं सकूंगी। दूसरी बात, फुल स्टॉप क्यों नहीं लगता है। कई बार हमें बातें सोचने की आदत बन गई है और बातों को सोचने में इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो हम सोचते ही रहते। जैसे और आदतों के बारे में हम अटेंशन रखते हैं कि हम ज्ञानी तो आत्माएं हैं, अब हमारे में ये आदतें नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार ये जो सूक्ष्म आदत है मन की कि फिर वही बात सोचते रहना, उसी के विस्तार में जाते रहना, तो मानसिक जो आदतें हैं हमारी, जिसके लिए बाबा कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो जो मानसिक आदतें हैं, मन जिसमें हैबिचेटेड हो गया है कि घूम फिर के मैं फिर वही बात सोचूंगी, जब तक और सेवा में बिजी होंगे वो विचार नहीं आएंगे, फ्री होंगे फिर वही बात लेके बैठ जाएंगे, मन वही सोचता रहेगा। तो सूक्ष्म में बाबा जो कहते हैं वो करने में इंटरेस्ट नहीं है और बातों को सोचने का ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए फुल स्टॉप नहीं दे पाते। लेकिन मुझे समय अनुसार अब अटेंशन रखना चाहिए, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना कि वो अगर आधा कल्प की आदतें हैं या स्मृति हैं तो संगम का तो एक सेकंड भी कितने वर्षों के समान है, उस हिसाब से संगम के अभ्यास का अब नेचुरल हो जाना चाहिए। आज बाबा ने कहा ना, तो मेरे को विस्तार में नहीं जाना है। इंसान को जीवन में आदत क्या है, विस्तार में जाने की, राई को पहाड़ करने की, सोच सोच के बात बड़ी करने की, अनेक बातें सोचने की। अब तक के जीवन में हमने वही किया है ना, मन को विस्तार में ले गए हैं। अब संगम युग में हम समेटने लगे हैं और अभी जो समय चल रहा है उस हिसाब से तो बाबा कहते हैं ना कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने पिछली इस सीजन की मुरली से ध्यान दिया होगा कि अब तक बाबा ये कहते थे कि अचानक होगा, इस वर्ष बाबा ने ये भी कहा है अचानक होगा मैंने कभी भी हो सकता है, पर ये भी बाबा ने कहा कुछ भी हो सकता है। अचानक होगा, कुछ भी होगा, मतलब जैसे हम कई बार सोचते हैं ना कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा, पर कुछ भी होगा मैंने सोचने की बात ही नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टोटल परिवर्तन का ड्रामा है। अभी तो व्यक्तिगत हिसाब किताब की बातें आ रही है ना, आगे चल के तो संसार में जो कुछ होगा प्रकृति के द्वारा उसके बीच हम होंगे। केवल व्यक्तिगत हिसाब किताब की बात नहीं, व्यक्तिगत हिसाब और प्रकृति और संसार के हिसाब किताब के बीच में होगा, है ना? तो मेरे हिसाब किताब की बात और संसार के हिसाब किताब की बात दोनों साथ साथ होगी। इसलिए बाबा ने कहा कभी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मुझे हिलना नहीं है, बस मुझे बाबा को साथी बनाकर अपने आप की आत्म अभिमानी अचल अडोल स्थिति में रहकर मुझे इसको पार करना है, है ना? कई चीज तुरंत खत्म नहीं होती। मान लो आपने राइट सॉल्यूशन अपना लिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत ही रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं, उसका जो टाइम है वो टाइम आपको पार करना पड़ेगा, है ना? उतना समय वो हिसाब चलेगा, माना उतना टाइम आपको हिम्मत धीरज योग रखना ही होगा। पर मुझे करना वही है जो बाबा कहता है, बस घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारना है, उस हलचल के बीच मुझे अपनी बिंदु आत्म स्थिति जो मेरी है अचल अडोल और बाबा के साथ की रखनी है। तो मेरा अगर बातों में इंटरेस्ट नहीं, जिसको बाबा कहते हैं कि बेहद का वैराग्य हो, जब तक अंदर से लंगर नहीं उठा है, जितना हम लोगों से अटैच रहते हैं, प्रवृत्ति से अटैच रहते हैं, उतना ही बातों में जाने की आदत आपको रहेगी। जितना आप डिटैच होंगे, बातें हुई, परिस्थिति आई, मेरे जीवन में हुई, दूसरों के जीवन में हुई, अब मुझे इसमें ज्यादा न जाकर फाइनली जो करना है कि मैं और बाबा उसी में मुझे रहना है, ऐसा आंतरिक वैराग्य होगा तो ही हम बुद्धि को समेट सकेंगे। बिगर वैराग्य हम न बुद्धि को समेट सकेंगे और न फुल स्टॉप दे सकेंगे। फुल स्टॉप के लिए तो समेटना होगा ना टोटल, तभी तो बिंदु बनेगा। तो मुझे अपनी इच्छाओं को भी सीमित करना है, कामनाओं को भी सीमित करना है, जिनके साथ रहते हैं, जिस सेवा प्रवृत्ति ग्रस्ती जहां भी हम हैं, अपने को हमें उपराम न्यारा वैरागी बनाना ही होगा। तब हम अपने में और बाबा में स्थित हो सकेंगे। इसलिए रोज क्यों बाबा हमें प्रैक्टिस कराते हैं, और जैसे जैसे समय अंत का आ रहा है, बाबा उस प्रैक्टिस को बढ़ाते जा रहे, है ना। सेकेंड में मैं बिंदु, बस वो अभ्यास के लिए बाबा ने कहा। माना मैं इतनी मगन हो सकूं बाबा में कि उस मोमेंट मेरे आसपास जो कुछ हो उससे मैं एकदम निकल जाऊं। मान लो मैं सेवा कर रही हूं ऑफिस में बैठी, और एक सेकंड बिंदु का अभ्यास करने का गीत बजाया, जो भी मैंने टाइम फिक्स किया वो हुआ। उस समय जो कारोबार है, जो लोग है, जो चीजें हैं, मैं उससे निकल सकूं और बिंदु बन सकूं। तो परिस्थितियां जब आएंगी, आ ही रही है, बल्कि वो भी जो जोरदार हलचल का वातावरण बनेगा, उस समय मैं अपने को समेट सकूंगी। आप देखना, कई बार हम अपने को वापस खींच नहीं पाते। मान लो आप अखबार पढ़ रहे हैं और गीत बज रहा है, बुद्धि उसमें से निकलती नहीं है। अखबार पढ़ना छोड़ देंगे पर बुद्धि का अटेंशन उसी बात पर रहेगा। किसी से हम बात कर रहे हैं और गीत बजा, कोई काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं और बिंदु अभ्यास करने का टाइम सिग्नल आ गया, प्रवृत्ति छोड़ देते हैं, बात करते चुप हो जाते, पर मन की हालत क्या है? तो उससे पता चलता है कि अभ्यास की कितनी आवश्यकता है। और दूसरा, मुझे उपराम होने की कितनी जरूरत है कि सिवाय बाबा के अब और कोई काम की चीज नहीं, ये मुझे समझ में आ जाए। मैं इतनी सेवा कर लूं, इतनी बात पूरी कर लूं, कुछ भी नहीं, अब बाबा की याद के आगे और कुछ नहीं। तो जितना मैं अपने को डिटैच करूंगी, न्यारा करूंगी, तभी मैं बिंदु लगा सकती हूं और फुल स्टॉप लगा सकती हूं, तो ही मैं फुल पॉइंट बन सकती। फुल पॉइंट बनना माना मगन हो जाना। बिंदु बनने का अर्थ क्या है? बिंदु तो मैं हूं ही, बिंदु तो मैं स्वयं हूं ही, पर बिंदु बन जाना माना बस एकाग्र हो जाना, मगन हो जाना, लवलीन हो जाना, यहां से गायब हो जाना, एक बाबा के पास पहुंच जाना। अभी हमारा रिजल्ट क्या है कि बाबा भी दिखता है, यहां की बातें भी दिखती है। जैसे वो पांडवों की बात सुनाते हैं ना, कि पक्षी की एक आंख केवल अर्जुन को ही दिखाई, बाकी सबको आसपास जो कुछ था वो सब दिखता था। हमें बाबा भी दिखता है, ऑफिस भी दिखती है, जिससे साथ बात कर रही थी वो भी दिखते हैं। मीन्स मैं बिंदु नहीं हो पा रही। तो एक तो मुझे जिगरी लगन हो कि मुझे बनना है, मुझे बनना है बिंदु, क्योंकि मेरे इस संगम युगी जीवन की और इस संगम युग में मैंने जो कुछ किया, इसकी सफलता तब है जब मैं अंतिम पेपर में बिंदु बन सकूं। हमने इतनी सेवा की, धारणाएं की, ज्ञान योग किया, उसका रिजल्ट तो ये आना चाहिए ना कि मैं सेकंड में बिंदु बन सकूं, तब मैं सफल हूं। इसलिए मेरी लगन अब ये बढ़ जाए कि मुझे बस बनना है। उस क्षण कुछ भी नहीं, बस मैं बाबा, मैं बाबा, बाबा बिंदु, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, मैं बिंदु, बाबा बाबा, बस वो ही लगन में मगन। तो अभी के अभ्यास में आसपास की परिस्थिति से हम निकल सकेंगे तो अंत में हो सकेंगे। और ये तो हम अभ्यास कर रहे हैं तब के रिजल्ट की बात है। अंत में जो आना है पेपर, वो कोई अभ्यास करेंगे तभी आएंगे, ऐसा थोड़ी अचानक आना है ना। वो तो हम कुछ भी कर रहे होंगे, कहीं भी होंगे। इसलिए अब हमारा टोटल फोकस, हमारा टोटल अटेंशन इसी बात पर हो कि मुझे बस ये जो लास्ट बात है, बिंदु बन जाना, वो मुझे बनना ही। तो आंतरिक वैराग्य, पहला जो वैराग्य था वो दुनिया से था, लौकिक से था, दैहिक बातों से था, विकारी बातों से था। अब जो वैराग्य की बात है वो है कि इस ब्राह्मण जीवन के विस्तार की जो बातें हैं उससे वैराग्य। इस ब्राह्मण जीवन में भी ठहर नहीं जाना है। इस ब्राह्मण जीवन में भी जो विस्तार की बातें हैं, अब वो आप खुद अपने आप को देखो कि ब्राह्मण जीवन में समय अनुसार, बाबा के सिग्नल अनुसार कौन सी बातें जरूरी हैं और कौन सी जरूरी नहीं है, वो हरेक को खुद जज करना होगा। जब भी कुछ हम समेटते हैं तो तब समेटते हैं ना, तब समेट पाते हैं ना कि भाई ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है ना। जैसे आप वर्ष भर में चीजें घर में डंप करते रहते हैं, चीजें आती है, रखते हैं, यूज करते हैं, रखते हैं, जब दीपावली या फाइनल सफाई करते हैं उस समय हम जज करते हैं कि अरे भाई ये मैंने रखी है पर सारा 2 साल 10 साल से रखी, कभी काम में ही नहीं ली, अब निकाल दो। तो वो आप जब डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि जरूरी कौन सी है और जरूरी कौन सी नहीं, जब रखी तब जरूरी लगी थी पर अब नहीं है, तो अब के समय अनुसार मुझे ब्राह्मण जीवन में देखना होगा कि अब क्या जरूरी है ना। पहले जरूरी था बहुत संपर्क करना, संबंध करना, साधन लाना, सेवा करना, बहुत चीजें। अब जबकि विस्तार हो चुका है, संदेश पहुंचाया गया है, ज्ञान की प्रत्यक्षता हुई है, अब के समय अनुसार ब्राह्मण जीवन में कौन सी विस्तार व्यर्थ की बातें हैं जो मुझे निकालनी है। डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो समेट सकेंगे। अब सब कुछ जरूरी नहीं है, ये आपको परखना पड़ेगा। और तब आप वो निकालेंगे, उसको ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे, और जो अभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप देखो अभी लेटेस्ट समय अनुसार बाबा कौन सी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। जो मैंने 3-4 बातें बताई तो मेरा उसी पर अब अटेंशन। दूसरा जो बाबा कहते हैं ना कि हम मन से खुद को या दूसरे को माफ नहीं कर पाते। क्यों नहीं माफ कर पाते हैं? इसलिए वो बातें क्यों ज्यादा चलती है, माफ नहीं कर पाते हैं। और माफ क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, इसलिए हम माफ नहीं कर पाते हैं कि इसने मुझे दुखी कर दिया, उसने मुझे बर्बाद कर दिया, उसने मेरे में विघ्न ला दिया। हम उनको दोषी समझते हैं, इसलिए हम उनको माफ नहीं कर पाते। पर अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि बिगर कर्मी के अकाउंट कोई भी मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकता है, मेरा जरूर कोई कर्मी के अकाउंट है, तब मेरे साथ ये बात हुई है। अगर ये समझ में आ जाए तो आपको ज्यादा संकल्प नहीं चले उस व्यक्ति के लिए या उस बात के लिए। और दूसरा कि उसने तो चलो मेरा बिगाड़ने का प्रयास किया, पर बार 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 सोच 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 अब तो मैं खुद ही खुद का बिगाड़ रही, तो वो मुझे नहीं करना है। चलो किसी ने तो किया, पर मुझे अब जरा भी अवस्था बिगाड़नी नहीं। इतनी मेहनत, जिंदगी भर के पुरुषार्थ से बनाई हुई अवस्था मुझे खुद नहीं बिगाड़नी। तो हम माफ भी कर सकेंगे और बिंदु भी लगा सकेंगे। फुल स्टॉप लगेगा तब हम फुल पॉइंट बन सकेंगे, बिंदु बन सकेंगे, और तब हम बिंदु बाबा की याद में मगन हो सकेंगे। ये लिंक है। प्रैक्टिकल जीवन की बातों में फुल स्टॉप लगे, प्रैक्टिकल जब बात हो रही है तब, तो मैं आत्मा बिंदु बन सकूंगी, मगन हो सकूंगी, या मैं कॉन्सेंट्रेट हो सकूंगी और बाबा में मगन हो सकूंगी। तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब वेस्टेज कम हो जाएगा तो अपने आप हम एनर्जेटिक बनेंगे, शक्ति से भरपूर बनेंगे। जो बाबा कहते हैं ना, स्टॉक जमा करो गुणों का, शक्तियों का। स्टॉक कौन सा जमा करना है? पुण्य कर्मों का, दुआओं का। ये जो सारी शक्तियां हैं, वो जो मुझे जमा करनी है ना, तो वो व्यर्थ से मैं निकलूंगी तब तो मैं जमा कर सकूंगी। अब बाबा से जो मुझे लेना है, तीन रीति से जमा होता है। एक तो बाबा से हम लेते हैं, वो दे रहा है, पर जितना मेरा बुद्धि योग उनके याद और प्यार में रहेगा तो वो मैं ले सकूंगी। दूसरा, जो हमारे यज्ञ में महान आत्माएं हैं, बाप समान आत्माएं हैं, जो हमारे बड़े वरिष्ठ है, उनके लिए रिगार्ड, उनकी बातों को हम माने, उनके संग में हम रहें, वो जैसा करते हैं ऐसे हम करें, तो हम अपने में जमा कर सकेंगे, शक्ति भर सकेंगे। कई बार हम बड़ों से दूर रहते मैं भी कमजोर, आप भी कमजोर, आपस में ही हम रह रहे हैं, चल रहे हैं, एक दो की मान रहे हैं, शक्ति कहां भरेगी? जो शक्तिशाली हैं उनका संग चाहिए ना, तो बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, उनकी बातें माने, वो जैसे कर रहे हैं ऐसे हम करें, तो हमारे में शक्ति आएगी। जो सोर्स है शक्ति के, उसे हम दूर है तो कहां से शक्ति आएगी? या उनकी कोई ना कोई कमी देखते रहते हैं तो कहां से शक्ति आएगी? जो महारथी आत्माएं हैं, वो महारथी इसलिए बने हैं, जरूर कोई बात में वो पावरफुल है, इसलिए वो वरिष्ठ है, बड़े हैं, निमित्त है। कई बार हम बड़े कोई भूल करते हैं, ऐसे हम करने लगते हैं कि बड़े भी तो करते, और उतनी ऊंचाई और शक्ति हमारे में होती नहीं है तो हम तो एकदम चटखाते में चले जाते हैं। पहले वो ऊंचाई हम प्राप्त करें, फिर हम उनके जैसे रह सकते हैं, चल सकते। कोई कहे कि देखो बड़े कितने अच्छे अच्छे मकान में रहते, अच्छी अच्छी गाड़ी में घूमते, हम भी क्यों नहीं? पर हम पहले उनके जैसे बड़े बने, उतनी तपस्या, सेवा, त्याग के रास्ते को पार करें, तो हमें बड़ों को भी समझना होगा, रिस्पेक्ट रखना होगा, उनका संग, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो शक्ति भरती। और तीसरी बात जो बाबा कहते हैं कि जो इस जीवन में इतनी प्राप्तियां हुई है वो बांटे, दूसरों को भी दे, देने से कम नहीं होगी और भरेगी। तो हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, तो हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। कई बार योग में जो मनोस्थिति है, मैंने देखा है कि कई बार हम योग पर अटेंशन देते हैं, प्रैक्टिकल पर नहीं। योग में बहुत ऊंची स्थिति, संकल्प, प्रैक्टिकल में विपरीत ही चलन। तो योग का कर्म पर प्रभाव नहीं आएगा, इसलिए जमा नहीं होता है, शक्ति नहीं बनती। बाबा कहते ना, संपन्न बनो तो संपूर्ण बन सकेंगे, समान हो सकेंगे। तो ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, सेवा, तपस्या, त्याग, इन बातों में हम बड़ों के समान। और तीसरा, अपने लेवल पर वेस्ट खत्म करें। मैं खुद को जहां तक स्थूल सूक्ष्म सब खजाने में, धन साधन यज्ञ की चीजें और संकल्प, श्वास, समय, सूक्ष्म और स्थूल जो भी खजाने हैं उनमें वेस्टेज कम करेंगे। ये नहीं भाई यज्ञ में मिल रहा है ले लो ले लो ले लो, तो वो भी तो हिसाब बनेगा कि मैंने लिया कितना और दिया कितना। अल्टीमेट यज्ञ भगवान का है, और हिसाब किताब का सिद्धांत ऑटोमेटिक और नेचुरल है, इसलिए भगवान भी निश्चिंत रहता है। हमारा कोई भी कर्म देख के वो ऊंचा नीचा नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है हिसाब किताब नेचुरल होना ही है। कहते हैं ना, भगवान कणे का घणा देता है, कण का अनेक गुना, कणे का घणा देता है पर कणे कणे का हिसाब भी लेता है। और वो ड्रामा अनुसार लेता है, उनको खुद कुछ नहीं करना होता है। वास्तव में हमें अटेंशन रखना है तो शक्ति जमा होगी, समय पर हम अचल स्थिर रह सकेंगे। तो वर्तमान समय यही अपने आप के ऊपर हम अंदर अंदर पुरुषार्थ करते रहे, ये बहुत जरूरी है। और लगन है तो जरूर हम बन सकेंगे, बाबा भी हमें मदद कर देगा। ओम शांति।